पिछली आयत में आपने लहवल हदीस जो है वो पढ़ा है, तो लहवल हदीस का ऑपोजिट क्या है? अहसन अल हदीस, क्योंकि हदीस बात को कहते हैं। और एक तो है ये लहवल हदीस बुरी बातें, फजूल बातें और दास्ताने, अफसाने, नावल, गाना बजाना, खुराफात, हंसी मजाक। और कुरान मजीद जो है वो अहसन अल हदीस है। और हदीस फिर, क्योंकि हदीस क्या है? ये बात है। तो लाहवल हदीस को छोड़ना है और अपनाना किसको है? अहसन उल हदीस को। तो कुरान मजीद जो है इसमें दिल लगाना है, कुरान को हिर्जे जां बनाना है, इसको याद करना है, हिफ्ज करना है, मानी समझने हैं और इस पर तदब्बुर करना है, तफक्कुर करना है, ताकुल से काम लेना है और इसको अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बनाना है। क्योंकि कुरान मजीद जो है ये ज़ाब्ता हयात है, ये उलूम का सरचश्मा है, ये हदायत का मंबा है, ये खैर का सरचश्मा है, बेहतरीन कलाम है। तो हमें अपनी जिंदगी का और अपने जिंदगी के गुजरे हुए माह साल का जरूर जायजा लेना चाहिए कि कितना वक्त हमने लहवल हदीस में गुजारा है और कितना वक्त जो है हम अहसनुल हदीस को देते हैं, कितना दिया है और कितना देना जरूरी है। और वक्त मेरे और आपके पास बहुत थोड़ा है। फिर अगली आयत 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, वाइजा तुतला अलैहि आयातुना, कि उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं। तो अल्लाह की आयात क्या है? ये अहसनुल हदीस हैं, बेहतरीन हैं। एक तरफ लाहवल हदीस पे लोग दिल दिमाग के साथ जो है वो उस पर ढेर हो जाते हैं और उसको अपनी जिंदगी का सरमाया समझते हैं। बाद वो कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की गिजा है, कि दिल भी तो बहलाना है। होमवर्क करते हुए बच्चे साथ में म्यूजिक लगाई हुई होती है, गाड़ी चला रहे हैं तो म्यूजिक लगाई हुई है, औरतें खाना पका रही हैं तो म्यूजिक लगी हुई है। तो अब आप देख लीजिए कि इसकी बजाय हम अपने औकात का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, साथ कुरान मजीद को लगा लें। 6 महीने के अंदर एक बच्चे ने, यूनिवर्सिटी के बच्चे ने यहाँ पे कुरान हिफ्ज किया है कि वो साथ में हर वक्त जो था कुरान सुनता था। किस पे सुनता था कुरान? हाँ, आईपॉड वगैरह पे, क्योंकि वो हर वक्त ट्रेन के अंदर या जो है वो बस स्टॉप पे खड़ा है, या वो गाड़ी में सफर कर रहा है, या वो यूनिवर्सिटी में जब भी पीरियड फारिग है और जो भी उसके औकात है। 6 माह में तकरीबन उसने कुरान हिफ्ज किया है। तो एक 80 साल के बूढ़े ने भी कुरान हिफ्ज किया है, बूढ़ी ने बूढ़े ने। तो क्या बात पता चलती है कि जब इस पे जो है ना वो वक्त दिया जाएगा, जब इसको अहमियत दी जाएगी, तो कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लाहवल हदीस जिनकी जिंदगी में पाया जाता है, तो उनका हाल क्या होता है? वाइजा तुजला अलैहि आयातुना, के जब उन्हें हमारी आयात सुनाई जाती हैं, वल्ला मुस्तकबिरन, तो वो रुख फेर लेता है। अब यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं कि आयात को सुनने के बाद उसका रवैया क्या होता है। वल्ला, पीठ दे जाता है। तवल्ला, वल्ला है ना, रुख फेरना, पीठ देना। तो वो रुख फेर लेता है मुस्तकबिरन। जब रुख फेरता है तो उसकी उस वक्त कैफियत क्या होती है, कौन सी सिफ्त में होता है? मुस्तकबिरन, किब्र मांग रहा होता है, किब्र उसके अंदर होता है। तो बड़े घुमंड के साथ वो इस तरह रुख फेर लेता है, कलम यस्माहा, गोया कि इसने उसको सुना ही नहीं। बड़े ही अफसोस का अंदाज है यहाँ पे कि एक तरफ अल्लाह का कलाम है और एक तरफ शैतान जो है उसका कलाम है। क्योंकि शैतान की बातें और शैतान को खुश करने वाली बातें, तो अब जो अल्लाह को झुटलाने वाले हैं और शैतान की पूजा करने वाले हैं, और उनका किब्र और गुरूर इस हद तक बढ़ गया है कि हमारी बातें जो कुरान की बातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमारी बातों की तरफ वो जरा भी तवज्जो नहीं देते। इधर कुरान की आयात उनको सुनाई गई और उन्होंने उधर कुरान की आयतों को सुना और साथ ही उन्होंने जो है वो अपना रुख ही फेर लिया, गोया के ये लहव लहब की बातों में जो है वो मगन रहना चाहता है। अब आप देख लें कि कुरान जो है उसमें कितना दिल लगता है, और टीवी में जो लहवियात हैं या मौसीकी है या ड्रामा है, फिल्में हैं, नावल है, अफसाने हैं, हंसी मजाक ठट्ठा हो रहा है, और जो कुछ भी गपशप हो रही है, इसमें कितना दिल लगता है। ये नहीं है कि मक्का के लोगों का सिर्फ जिक्र हो रहा है, हर वो शख्स जिसके सामने कुरान आता है और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में ये लाहवल हदीस है, तो वो अपना जायजा ले सकता है कि मेरा दिल किस चीज में लगता है। वसन एक औरत पिछले दिनों अपनी बात बता रही थी कि जो है वो अफशां टीवी पे कोई ड्रामा आया करता था, बहुत पुराना ड्रामा, तो कहती थी कि मेरी बेटा मुझे पैदा हुआ, डिलीवरी हुई, पिछले वीक की बात कर रही थी, कहने लगी जिंदगी मौत में से गुजर कर इंसान एक बच्चे को जन्म देता है, तो मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे वालदैन रात भर तहज्जुद पढ़ते रहे, जाए नमाज से उठे नहीं, लेकिन जब मेरे पास लोग आए खैरियत पूछने तो मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि अफशां की किस्त कैसी गुजरी, तो बाप ने कहा कि डूब कर नहीं मरती, या कुछ ऐसे कहा कि शर्म नहीं आती कि हमें तेरी फिक्र पड़ी हुई थी, तुम्हें अफशां की फिक्र पड़ी हुई। एक मिसाल मैं आपको दे रही हूं कि क्या हाल होता है ना, कि जिस चीज में दिल लगता है तो उसमें क्या हाल होता है। तो हम सबको भी अपना जो है वो जरूर जायजा लेना चाहिए कि हमारे अंदर भी कहीं अल्लाह की आयात के बारे में बेनियाजी तो नहीं पाई जाती, कि ऐसा तो नहीं कि दिल ही नहीं लगता, कि ऐसा तो नहीं कि जब क्लास की बात आती है तो 100 दूसरे काम हमें याद आने लगते हैं, और जो ही जब क्लास नहीं होती ना तब नहीं वो काम आते याद, उस दिन नींद भी नहीं आती, उस दिन थकन भी नहीं होती, उस दिन और वो काम नहीं होते, लेकिन जिस दिन क्लास होती है कहते हैं अगर आज छुट्टी कर लेना, अगर टीचर छुट्टी कर दे, अगर जो है वो ऐसे हो जाए तो फिर मैं ये और ये और ये काम ना कर लूं। तो असल बात क्या है कि यहां पर जो है मना किया जा रहा है कि कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है, इससे तगाफुल ना बरतो, इससे बेरुखी ना बरतो, इससे पहलू तही ना करो, इसको वक्त दो, इसको अहमियत दो, और ये भी बेरुखी है कि उसको सुना ही ना जाए, ये भी बेरुखी है कि उसको सुना तो जाए पर उसको अपनी जिंदगी में नाफिज ना किया जाए, ये भी बेरुखी है कि ये भी किब्र है कि सुनने के बाद कुरान की आयात का मजाक उड़ाया जाए। तो अल्लाह की आयात जो है उनको उनके साथ सुनी अनसुनी करना, उनका मजाक उड़ाना, यहाँ पे इस सिलसिले में जो है ना वो तंबीह की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वाइजा तुतला अलैहि आयातुना, कि जब इस पर हमारी आयात पढ़ी जाती है, किसी और की नहीं, हमारी आयात इस पर सुनाई जाती है, तिलावत की जाती है, वल्ला मुस्तकबिरन, इतना ही काफी था वल्ला कि उसने रुख फेर लिया, आगे कहा मुस्तकबिरन, बड़े घमंड के साथ, मुस्तकबिर जैसे उसका नाम ही रख दिया गया, बड़े घमंड के साथ उसने रुख फेरा, और उसका उस वक्त हाल क्या था जब रुख फेरा, कालम यस्माहा, गोया कि उसने सुना ही नहीं। जैसे होता है ना कि कोई बहरा होता है तो इसलिए मुंह फेर लेता है कि उसने सुना ही नहीं, कन्ना फी उज़ुनैही ही वक्रा, गोया के इसके कान बहरे हैं, कान्ना गोया के ही उज़ुनैही ही, तो ये क्या है, उज़ुनैन दो कान, मुंह गिर चुका है, गोया के उसके दोनों कान जो हैं वक्रा, और आप पढ़ ही चुकी हैं कि ये बोझ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह इज्जत और तौकीर भी होता है, वकार भी होता है ना, एक वजन होना, तो गोया कि उसके कानों में एक बोझ है, जैसे फी सदर ही वक्र फी ओजो नहीं वक्र, तो ये मानवी बोझ के लिए भी आता है और ऐसे बोझ के लिए भी जो के नजर आए, तो यहाँ पे गोया, अब ये नहीं है कि उसके कान के अंदर कोई चीज डाल दी गई थी इसलिए जो है वो उसने सुना नहीं, बल्कि क्या है कि गोया के वो शख्स जो है वो कुरान मजीद को जब सुनता है तो गोया कि उसको ऐसा बोझ महसूस होता है जो उसको सुनने से महरूम कर देता है, नहीं लेकिन बोझ, जैसे एक बाज़ू का कानों में मैल होती है तो बाज़ लोग वक्र मैल को भी कहते हैं, तो बहरहाल सुनी अनसुनी करता है, गोया कि वो बहरा है नहीं, फबशीरहु बिअज़ाबिन अलीम, अच्छा इसको जो है वो खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अजाब की, पीछे कहा अजाब मुहीन रुसवा करने वाला अजाब, यहाँ पे कहा अजाबिन अलीम दर्दनाक अजाब, और किसी को अजाब की खबर दी जाए और साथ में ये कहा जाए कि उसकी खुशखबरी सुना दीजिए, तो इसका क्या बात पता चलती है कि ये भी उसकी जो है वो उसका मजाक उड़ाना है, हकारत का एक अंदाज है कि उसको अजाब की खुशखबरी सुना दी जाए, हालांकि अजाब की खुशखबरी तो नहीं है, ये तो बहुत ही मुसीबत और परेशानी का जो है वो वक्त है। अब आप देखिए कि बाज चीजें जो इंसान के मतलब की होती हैं वो उसको ना भी सुनाई जाए तो वो सुन रहा होता है, और जो उसके मतलब की हैं जैसे कुरान मजीद या अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बातें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीरत, जो मेरे और आपके मतलब की हैं, जिससे मेरी दुनिया भी बन सकती है और मेरी आखिरत भी बन सकती है, आपकी दुनिया संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है, तो फिर इससे इंसान जो है वो पहलू तही क्यों करता है। तो गोया के यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जो कुरान से गफलत बरतते हैं उनको तस्कीर कर रहे हैं, उनको इस्लाह की दावत दे रहे हैं कि तुम्हारा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो इंसान के अंदर कैफियत पैदा हो जाती है ना, कानना फी ओजो नहीं ही वकरा, ऐसी कैफियत क्यों पैदा होती है कि कान अब कुछ सुनते ही नहीं है, दिल में आयत असर नहीं करती। एक ही कुरान है, एक ही कलाम है, एक पर असर करता है दूसरे पे असर ही नहीं करता। एक ही महफिल में बैठा हुआ होता है इंसान, या मक्की दौर में भी कुछ सुनते थे कुछ नहीं सुनते थे। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जो शख्स जितना ज्यादा गुनाह करता है ना उतना ज्यादा कुरान उस पर असर नहीं करता, और जो शख्स अपनी जिंदगी को गुनाह से पाक करता चला जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नेकी की तौफीक देता चला जाता है, नेकी में उसका दिल लगता चला जाता है। और आपको पता ही है कि हाफले का इलाज क्या है, गुनाह ना करना। लोग कहते हैं ना कि कोई दवाई बता दें कोई दुआ बता दें, तो जो है वो इसका इलाज क्या बताया जाता है कि इंसान जब अपने नफ्स को गुनाहों से भर लेता है, अपने पैमाने को, तब उसके अंदर जगह ही कोई नहीं रहती कि हदायत और अल्लाह की आयत और कलाम उसके अंदर आ सके। तो क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक करना चाहिए। और गुनाह करने की सजा कैसे मिलती है, एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींचता है। नेकी करने का अजर कैसे मिलता है, एक नेकी दूसरी नेकी को खींच कर लाती है। एक नेकी आप करते हैं अल्लाह ताला उसको आपको नकद इनाम देते हैं, आपको दूसरी नेकी की तौफीक हो जाती है, वो आप करते हैं अल्लाह ताला आपको तीसरी नेकी की तौफीक दे देते हैं। तो ये जो वक्र की कैफियत पैदा हो जाती है, और वल्ला मुस्तकबिरन कुरानी आयात के साथ इंसान के अंदर दिल ही नहीं लग रहा, पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा, बड़ी बेगर्जी नफसा नफसी। तो असल वजह क्या है, ये दिल हम अमली जिंदगी में लाहवल हदीस के अंदर ज्यादा खो गए हैं, मुबतला हैं। जैसे कहते हैं ना हमारे बच्चे जो हैं वो क्यों कुरान नहीं पढ़ते, हम इतना उनको कहते हैं, हमारे शौहर या बाल शौहर कहते हैं हमारी बीवी नहीं पढ़ती, हम अपनी बीवी को इस तरफ लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप जो हैं आप देखें कि एक दिन के अंदर आपकी जिंदगी में, आपके घर वालों की जिंदगी में लावल हदीस कितना पाया जाता है, और लावल हदीस को सबसे पहले निकालें। लावल हदीस निकालेंगे तो कुरान उसकी जगह जो है वो असर करेगा। कहते हैं ना कि डॉक्टर गुलाम मुर्तजा के पास एक शख्स आया, शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, बड़ा अच्छा उन्होंने बोला और लिखा भी है। और वो कहते हैं कि एक बच्चा नौजवान था और आया और कहने लगा, किसी के इश्क में मुब्तिला था, और कहने लगा कि मेरी बड़ी बुरी कैफियत है और ये इन चीजों की तरफ आना चाहता हूं, मेरा दिल ही नहीं लगता ना। तो उन्होंने जो है उसको जो इलाज बताया तो उन्होंने कहा कि तुम जो है ना अल्लाह का जिक्र करना शुरू करो। तो उसका दिल ही नहीं चाहता था, कहा कि नहीं तुम करना शुरू करो और जो बाकी चीजें ना उनको अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करो। यानी खाली जिक्र भी कुछ फायदा नहीं देता जब तक कि परहेज ना किया जाए, दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलना है। तो आज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में कुरानी आयात के साथ वल्ला मुस्तकबिरन कान फी ओज़ो नहीं वकरा की कैफियत ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, इंटरनेट पर जो गैर जरूरी बैठकर नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं या शोहर मियाँ बीवी बैठे हैं, बीवी सुबह से लेकर शाम तक घर बैठी है, शोहर जॉब पे गए इंतजार कर रही है, वो आकर फिर इंटरनेट पर हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, है ना। इसी तरह बच्चे जो हैं होमवर्क के बहाने इंटरनेट पर बैठे हुए हैं, चैटिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, या औरतें जो हैं वो सारा दिन जाने शोहर बच्चों के जाने के बाद वो मूवियां देख रही हैं या नावल अफसाने वगैरह पढ़ रही हैं या गप शप और कोई भी ऐसी चीजें जो फजूल और बेहुदा हैं, हर ऐसी बात जो आदमी को अपने अंदर मशगूल करके दूसरी चीजों से गाफिल कर दे, तो देखना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे कितने ऐसे काम थे जो गैर जरूरी थे। ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आप अपनी जिंदगी से गैर जरूरी काम, बातें, सोचें और चीजें निकाल ना दें। ईमान की तकमील कैसे होगी? गैर जरूरी बातें, चीजें हम निकाल दें। आपने सूरत नूर में एक हदीस पढ़ी थी, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत में लज्जत पैदा कर दे तो फिर क्या करना है? अपनी निगाहों की हिफाजत करो, गसले बसर करो, निगाहों को पस्त करो, तो अल्लाह दिल इबादत में लगाएगा। तो ये है असल बात कि इसकी बिना हम सबको अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर देखना चाहिए कि कुरान से दूरी की वजह क्या है। लाहवल हदीस है, तो लाहवल हदीस को निकालेंगे तो उसकी जगह फिर कुरान लेगा। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो जो लोग कुरान का मजाक उड़ाते हैं उनको जवाब दे रहे हैं, और जो कुरान पर ईमान लाते हैं उनको खुशखबरी सुना रहे हैं। इन्नल्लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहाती, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमले सवाले किए, लहुम जन्नातुन नईम, उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं। पहले लावल हदीस इख्तियार करने वालों के लिए और कुरान को ठुकराने वालों के लिए क्या है? फबशीर हूँ भी अजाब इनलीम, दर्दनाक अजाब, दर्द वाला अजाब, ऐसा अजाब जिसका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। हर तरह का दुख, तकलीफ, हसरत, परेशानी, नदामत और आग, सांप, बिच्छू, उन सब का मजमुआ जो है, और उससे बहुत कुछ बढ़कर जहन्नुम है। तो एक तरफ अजाबुन अलीम है, दूसरी तरफ जन्नतुन नईम है, नेमतों भरी जन्नतें, नेमतों भरे बागात। अब ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि इनके लिए जन्नत की नेमतें हैं, ये नहीं कहा जन्नत की नेमतें हैं, बल्कि कहा इनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं। दोनों में फर्क है ना। अगर पहली बात होती तो मतलब क्या था कि वो नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ तो जरूर होंगे, मगर इनके लिए क्या है कि जन्नत की नेमतें हैं, गोया कि जन्नतें इनकी अपनी नहीं है। यहां पे कहा कि इनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं, इससे ये बात पता चलती है कि पूरी की पूरी जन्नतें इनके हवाले कर दी गई हैं। जिस तरह एक मालिक नहीं होता कोई किसी को उससे मुस्तफीद होने का पूरा मौका दे दिया जाए, किसी को पूरे हकूक मलकियत दे दी जाए, ये है मुराद। लहुम जन्नातुन नईम, उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं, खालिदीन फीहा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। एक औरत एक दफा रोने लगी कि पहले मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मेरा ख्याल रखता था, अब उसकी मोहब्बत मेरी तरफ नहीं रही ना। तो इंसान शौहर की मोहब्बत हो या जवानी हो या दौलत हो, कोई भी चीज हो, इंसान उसमें एक दवाम चाहता है, उसमें एक सबात चाहता है। चेहरे पे झुर्रियां क्यों पड़ गई, जॉब क्यों छूट गई, अब सेहत क्यों नहीं है, अब कवा मुजमही क्यों हो गए, बच्चे पूछते ही नहीं, क्यों नहीं पूछते अब बच्चे, अब दोस्त दोस्तों के अंदर वो मोहब्बत प्यार नहीं रहा, अब दोस्त दोस्तों का जो ग्रुप था उसमें से मुझे उन्होंने निकाल दिया है। हम एक दवाम चाहते हैं, है ना, खालिदीन फीहा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। लेकिन ये दवाम दुनिया में नहीं है, दुनिया दारुल क्या है, करार नहीं है, दुनिया तो दारुल सबात है, दारुल सबात भी नहीं है, दुनिया दारुल फना है। दारुल सबात और दारुल करार तो आखरत है। खालिदीन फीहा, वहां वहां हमेशा रहेंगे। वादल्लाही हक्का, ये अल्लाह का पुख्ता वादा है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह अपने इस वादे को पूरा करेगा और कोई उसको पूरा करने से रोक नहीं सकता। अब देखें खालिदीना फीहा, ये भी तो अल्लाह का वादा है ना, एक तरह खुशखबरी है कि उसमें हमेशा रहेंगे। फिर कहा वाद अल्लाह, इतना ही काफी था, अल्लाह का वादा है। हक ताकीद दर ताकीद के मानी पैदा हो गए, क्योंकि अहले मक्का जो थे ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। वो ये कहते थे कि अल्लाह की आयात पर ये ईमान लाकर जो अपनी जिंदगियों को बना और संवार रहे हैं इनका तो नुकसान है। तो अल्लाह ताला ने वाद अल्लाह ही हक्का के अंदर ही ताकीद दर ताकीद का मजमून पैदा करके बताया कि मुस्तकबिरीन जो अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये गरीब और गुलाम और पिसे हुए मुसलमान कहां इनको अब भी बादशाहतें मिल सकती हैं। दुनिया में इतनी जो है ये बेबसी की और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं तो कहां इनको अच्छे दिन मुयस्सर आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला अहले ईमान को इत्मीनान दिला रहे हैं कि आप इत्मीनान रखें, वादल्लाही हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा है। ये यकीन जैसा हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह को था, जैसे हजरत अम्मार रजी अल्लाह को, हजरत यासिर रजी अल्लाह को, हजरत सुमैया रजी अल्लाह रजी अल्लाह अनहा, हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ना और दीगर सहाबा सहाबियात को था, काश के मुझे और आपको भी हो। अगर अल्लाह का ये वादा कि जन्नत मिलके रहेगी, अजर मिलके रहेगा और नेमल अजर होगा, और तो ये अगर मुझे और आपको यकीन हो जाए ना, तो मेरी और आपकी जिंदगी के सोचने के जाविये बदल जाए, फिर मुझे और आपको परेशानी ना हो, फला ने मुझे ये इल्जाम क्यों रखा, फला ने ये बात क्यों कहती, फला मैं इतना करती हूँ मुझे मानता ही नहीं है, और उसने सलूक वो क्यों नहीं करता, फिर आप पहरों बैठकर किसी का जुमला, आप पहरों उसके जुमले पे सोच के रोएंगी नहीं, आप चेहरा बसोरेंगी नहीं, आप उसे अपना रुख फेर नहीं लेंगी, क्यों? वादल्लाह ही हक्का, अल्लाह ताला कहते हैं कि मोहसिनीन एहसान के दर्जे की नेकी करने वालों के लिए ही तो जन्नत है। वाहुल अजीजुल हकीम, यहाँ पे अल्लाह ताला की दो सिफात बताई गई हैं, एक है अजीज और दूसरी है हकीम। अब देखो अजीज जो है, देखें इसके मानी क्या होते हैं, अजीज जो है इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है वो गालिब है, अल्लाह ताला कोई बेबस हस्ती नहीं है कि वो मुस्तकबिरीन को और वो लोग जो कुरान की आयात का मजाक उड़ाते हैं उनको उनके गुनाहों की सजा ना दे, और वो लोग जो नेकियां कर रहे हैं उनको उनकी नेकियों का बदला ना दे। वहुल अजीजु, वो गालिब है और वो जो फैसला करेगा उसके फैसले को गालिब होने से कोई हस्ती रोक नहीं सकती। अल हकीम, दूसरी बात ये कही कि अल्लाह का फैसला हिकमत पर मबनी है, और लोग ये मत समझें कि दुनिया में अगर ईमान लाने वाले पिसे हुए हैं, परेशान हाल हैं, तो गोया के ये कोई ज्याती है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि असल बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसके जो भी फैसले हैं कि दुनिया इम्तिहान गाह है और आखिरत में अल्लाह ताला हर एक को उसके नेकी का बेहतरीन बदला देगा और गुनाहों की जो है वो सख्त सजा देगा, तो अल्लाह के जो भी फैसले हैं वो हिकमत पर मबनी हैं। और दूसरी बात क्या है, हाकिम, हकम, जो भी वो फैसले करता है उनको कायम करके रहता है। फिर आप देखिए कि अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, जहां वाहुल अजीजुल हकीम के कयामत के दिन हिसाब किताब होगा सारों का, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो तवज्जो दिलाते हैं और वो बताते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे पहचानो तो, और तुम मौजा मांगते हो, तो कायनात जो है वो एक मौजा है। खलकस समावाती बगैर अमदिन, अल्लाह ने पैदा किया आसमानों को बगैर अमदिन, बगैर सुतूनों के। अब आप देख लीजिए कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि आसमानों को बिला सुतून बनाया है, खलकस समावाती, आसमानों को बनाया बगैर अमदिन, बगैर सुतून के, तरउनहा, जो तुमको नजर आए। ये जो आयत है इस सिलसिले में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इस इबारत के दो मफहूम हो सकते हैं, एक तो ये तरउनहा जो है इसको अमद की सिफत करार दिया जाए और इसकी जमीर जो है अमदा की तरफ राजे की जाए। तो मानी क्या होंगे कि अल्लाह ताला ने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जिनको तुम देखते हो, यानी अगर सतून होते तुम इनको देखते, जब सतून नजर नहीं आते तो मालूम हुआ कि आसमान की अजीम शान छत बगैर सतूनों के बनाई गई है। तो एक तो ये राय है कि उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए। दूसरी इसके मानी क्या है कि तरउना हा की जमीर जो है ना, हा इसकी जमीर जो है वो समावात की तरफ राजे है, तो ये जुमला मुस्तकिल करार दिया जाए। तो मानी क्या होंगे कि अल्लाह ताला ने आसमानों को बगैर सतून के पैदा किया जैसा कि तुम देख रहे हो, तो फिर इसके मानी क्या है कि गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तुम खुद देखते हो कि आसमानों को पैदा किया है बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, और एक तो मानी ये है। दूसरा क्या है कि सतून तो हैं लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आते, है ना, कोई चीज ऐसे बना दी जाए कि बाकी लोगों को जो है वो नजर ही ना है। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि आसमान जो है ऐसे सतूनों पर कायम है जो तुमको नजर नहीं आते। ठीक है, एक ये भी राय है, और एक राय क्या है कि बगैर सतूनों ही के पैदा किया। और आप देखें कि हमें आसमान के कोई पिलर नजर आते हैं? कहीं आसमान के पिलर नजर नहीं आते ना। तो आसमान क्या है? बगैर सतूनों के है, एक मानी ये है। और दूसरे मानी ये है कि पिलर तो हैं, लेकिन ऐसे पिलर पर आसमान की छत कायम है जो हमें नजर नहीं आते। समझ आई बात की? ये मानी है। तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना भी जो है वो ऊपर का निजाम है उसमें जो बेहद्दो हिसाब अजीमु शान तारे हैं, सैयारे हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट पर, अपने अपने मदार पर, आप देखें कि उसी पर चल रहे हैं ना, उससे हटते नहीं है। कोई तार नहीं नजर आता कि उनको बांध दिया गया है, कोई लाइनें नहीं हमें खींची हुई नजर आती। जैसे गाड़ियां जमीन पर जब चलती हैं रोड्स पर, तो क्या बना, लाइनें लगी हुई होती है ना बीच में, अपने अपने उसमें वो चलती हैं। और अगर जरा से इधर उधर होती हैं, और आप देखें कितने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कायनात में ऊपर आसमान पे कोई तार तो नहीं नजर आता कि एक तार से बांध दिए गए हों सैयारे सितारे, के वो अपने अपने ऑर्बिट पर कायम रहेंगे, या फिर कोई सुलाखें हों जो इनको एक दूसरे पर गिर जाने से रोक रही हो। तो ये क्या है? ये जो ग्रेविटी का निजाम है, जो कशिश है, जो इस निजाम को थामे हुए है, ये क्या चीज है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर जो है वो गौर व फिक्र की दावत देते हैं। आपने समा लफ्ज भी पढ़ा है और फल्क लफ्ज भी पढ़ा है। समा क्या है? समा जो है ये बुलंदी को कहते हैं, है ना? तो जैसे कि, और फलक जो है वो क्या है? हाँ, फलक जो है वो अपना जैसे एक ऑर्बिट है, एक जगह है, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फलक की जमा अफलाक है, समा की जमा समावात है ना? तो कहीं कहीं अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को इकट्ठा जब जिक्र करते हैं तो पूरी कायनात मुराद ली जाती है, समावाती वल अर्थ, है ना, पूरी दुनिया, पूरी कायनात मुराद ली जाती है। और कभी कभी फलक का लफ्ज इस्तेमाल आता है। तो फलक जो है वो क्या है कि फलक से मुराद सैयारों के ऑर्बिट हैं जिन पर वो घूम रहे होते हैं, और समा से मुराद क्या होता है? बुलंदी। तो आसमान का वजूद भी अल्लाह ताला ने कायम रखा है, और ऑर्बिट में अपने अपनी जो जगह है, अपने अपने मदारों में ये जो सब चल रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला ने कायम रखा है। तो मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला इसको बयान करते हैं। और यहां पे भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पे समावात कहा गया है। तो समा के क्या है, समावात के क्या मानी है? जब ये बुलंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हर वो चीज जो हमारे सर से ऊपर है उसको समा कहेंगे। अब समा, ऊपर वाली चीज समा है, तो नीचे वाली क्या है? अल अर्ध है, जमीन है ना? तो जमीन पस्ती को भी कहते हैं और नीचे अर्ध जमीन को भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखें कि एक ही चीज अपने से पस्त चीज के मुकाबले में समा भी है ना, और वही चीज अपने से बुलंद चीज के मुकाबले में अर्ध भी है। हमारी जमीन अर्ध है तो पहला आसमान इसके मुकाबले में समा है, और यही पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में क्या है? अर्ध है। खुद वो समा है और नीचे वाले के लिए वो अर्ध है। समझ आ गई? कि तीसरा आसमान जो है वो क्या है? वो दूसरे आसमान के लिए क्या है? अर्ध है। और वैसे ऊपर चले जाएं तो क्या है? वो समा है। तो यहां पे आप ये पॉइंट भी आप समझ सकती हैं कि एक ही चीज अपने से पस्त चीज के मुकाबले में समा है, और वही चीज अपने से बुलंद चीज के मुकाबले में अर्ध है। हमारी जमीन अर्ध है तो पहला आसमान इसके मुकाबले में समा है, और यही पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में अर्ध है। यानी आप मुकाबले की बजाय ये भी कह सकते हैं दूसरे आसमान के लिए पहला आसमान अर्ध है ना, तीसरे आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान फिर उसकी अर्ध हुआ। तो इस तरह सात आसमानों के मुकाबले में सात जमीनें भी वजूद में आ गईं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबा समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन, अल्लाह वो है जिसने सात आसमान और वैसी ही जमीनें पैदा की। तो सूरत नंबर 65 आयत नंबर 12, तो यहां पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खलक समावाती बगैर अमदिन तरउनहा, इसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए। وَعَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے. زمین میں پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے؟ رواسیہ، اس کا روٹ کیا ہے؟ راسین واو، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو گاڑ دینا. ہاں، اور ایسے پہاڑ کو راسیہ کہتے ہیں جس کے تین حصے زمین کے اندر ہیں اور ایک حصہ اوپر ہے. جیسے کیل نہیں ہوتا، کیل کا صرف فیس چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن سارا کیل لمبی انگلی کی طرح آپ دیکھیں وہ سارا جو ہے وہ اندر ہوتا ہے دیوار کے یا زمین کے. وَعَلْقَا، اور ڈال دیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، رَوَاسِيَا، پہاڑ، زمین میں پہاڑ جما دیے. اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ چاہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو اس لیے رکھ دیا تاکہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو ہے وہ قائم رہے، کیونکہ پہاڑوں کو زمین اس طرح بھاری بوجھ بنا دیتی ہے. پہاڑ جو ہے وہ زمین پر اس طرح بھاری بوجھ بن جاتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، زمین حرکت نہیں کر سکتی. تو خود ہی کہہ دیا کہ ان تمیدہ بیکم، کہ کہیں وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس طرح ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیا. بَثَّ مَبْثُوثٌ ہے نا، آپ پڑھ ہی چکی، پھیلا دینا، بکھیر دینا. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیے ہیں. فیہا، ہا کی ضمیر الارض کے لیے، اس نے بکھیر دیے ہیں. من کل دابا، ہر طرح کے جانور. دب کسے کہتے ہیں؟ دال بابا، رینگ کر چلنے والا، حرکت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک طرف زمین پر پہاڑ رکھے تاکہ زمین ادھر ادھر ڈولے نا. اور آپ کبھی دیکھیں سمندر جو ہے، جو جہاز سمندر میں چلتے ہیں، آپ نے بھی کبھی کسی جہاز پہ اگر سفر کیا ہو یا کشتی پر، پھر جب ساحل پر جہاز آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ جہازوں کو باندھ دیا جاتا ہے، لنگر انداز کیا جاتا ہے. تو کیوں ان پر لنگر ڈالے جاتے ہیں؟ تاکہ جہاز ڈولے نہیں، تاکہ جہاز ادھر ادھر ہو نہ جائے. اگر جہاز ڈول رہے ہیں تو کوئی سفر نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا ان کو، ان پر نا بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر رکھا ہے تاکہ زمین ڈول نہ سکے. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ زمین پر ہر طرح کے جانور، یہاں پہ کل دابا سے مراد کیا ہے؟ انواع اقسام کے جانور زمین میں پھیلائے ہیں. انسان انہیں کھاتا بھی ہے، سواری بھی کرتا ہے، وزن اپنا ان پر لاتا ہے، اور پھر زینت اور آرائش کے لیے بھی، جیسے گھریلو جانور کے طور پر بھی انسان رکھتا ہے. دیکھیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت خوبصورت جو ہیں وہ حشرات الارض ہیں، یا پھر جو ہے وہ مختلف طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے، اڑنے والے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہیں. ایسی عجیب عجیب ان کی ساخت ہے کہ آپ دیکھیں تو پیروں بیٹھ کر ان کو جو ہے وہ دیکھتی رہے نا. آپ مچھلیوں کو دیکھیں، آپ جو ہے وہ ٹڈے کو دیکھیں، آپ اس کے علاوہ خاردار پیٹھ والی ستارہ مچھلی کو دیکھیں. اور بعض مچھلیاں ایسی ہیں کہ ان کی دم پر آنکھیں ہوتی ہیں، دوسری جو مچھلیاں جو اس کے آس پاس ہوتی ہیں اس کے قریب نہیں آتی، کیونکہ دم میں موجود اس کی گمراہ کن آنکھیں انہیں یہ تاثر دیتی ہیں کہ وہ جاگ رہی ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس وقت میرے پاس جو ہے وہ دم پر، ایسی مچھلی جس کی دم پر اس کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، اس کی تصویر ہے نا. تو اس سے جو ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ وہ پیٹھ سے ہی حملہ کر دیتی ہے. دوسروں کو پتا چلتا ہے کہ یہ پیٹھ ہے تو دوسری جو مچھلی ہے وہ اس سے کیا کرتی ہے، گویا کہ گمراہ ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اب آپ یہ دیکھیں، بعض ایسے ہیں پرندے کہ رنگ جیسے ہے نا درختوں کا، پتوں کا، ویسے ہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ کبھی کبھی بیٹھ کر یہ سارا کام کیا کریں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرے. ایک دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہوا ہے. اور اب تو ہر روز آپ یاہو پہ چلے جائیں، آپ گوگل پہ چلے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے نئے جانور، نئے پرندے، نئے حشرات جو ہیں، جو اب تک دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا تھے اور اب پتا چلے ہیں. تو یہ عجیب عجیب چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. ماں کے معنی کیا ہے؟ بارش کے، کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اس نے جو ہے وہ اگا دی اس میں، کس نے اگائی؟ زمین میں. من کل زوجن کریم، زمین میں قسم قسم کی، زوج قسم قسم کی کریم عمدہ چیزیں اگائیں. زوج کے دو معنی آپ پڑھ چکی ہیں، ایک تو ہوتا ہے جوڑا جوڑا، جوڑا جوڑا بھی ہے کہ ایک پودا دوسرے پودے کے لیے جوڑا ہے نا، اور دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں، زوج کے صنف کے ہوتے ہیں، قسم کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر صنف کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے غلے اور میوے پیدا کیے، اور جو میوے اور غلے پیدا کیے ان کی صفت کیا تھی، ان کی صفت تھی کریم. کریم کے معنی کیا ہے، کثرت منافع کی طرف بھی اشارہ ہے اور حسن رنگ کی طرف بھی اشارہ ہے، رنگا رنگی ہے. آپ ایک گلاب کو لے لیں، کتنے رنگ ہیں گلاب کے، سفید ہے اور زرد ہے، سرخ ہے، گلابی ہے، ڈفرینٹ رنگ ہیں گلاب کے، طرح طرح کے. تو اللہ تعالیٰ نے من کل زوج کریم، زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دی. تو گویا کہ اللہ رب العزت لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح کہ ایک طرف جاندار ہیں، اور کہتے ہیں کہ جانداروں کی اب تک 10 لاکھ قسموں کا علم انسان کو ہو چکا ہے، اور اس طرح 2 لاکھ کے لگ بھگ نباتات کا پتہ چل چکا ہے، 2 لاکھ نباتات ہیں. تو جب اتنی زیادہ ان کی قسمیں ہیں، اور پھر جانداروں کی طرح نباتات، پودے اور درخت ان کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، ایک تو ہے نا قسم قسم، تو خالی زوج کو اگر آپ پڑھیں تو ایک تو قسم قسم کے معنی میں، اور دوسرا یہ کہ جوڑے جوڑے کے معنی میں. تو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اہل مکہ کیا کہتے تھے رسول اللہ کو، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ کائنات کے بکھرے ہوئے معجزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح کہ یہ سارا کچھ کس نے بنایا. فامبتنا فیہا من کل زوج کریم. آپ کبھی ایک لمحے کو غور تو کریں، آپ باہر جائیں اور آپ دیکھیں آسمان کو کہ نیلی چھت ہے، اتنا بڑا آسمان اور اس کے ستون بھی نہیں ہے. ایک عمارت جتنی بڑی ہوگی نا اتنے مضبوط اس کے پلر بنائے جاتے ہیں. آپ نے حرم دیکھا ہے، کتنے بڑے بڑے موٹے موٹے ستون ہیں. آپ نے مسجد نبوی دیکھی ہے، آپ نے بادشاہی مسجد دیکھی ہے، آپ نے جو وہ فیصل، ہاں جی ہاں فیصل مسجد جو اسلام آباد میں، وہ دیکھیے. تو جتنی بڑی مساجد ہیں یا عمارتیں ہیں اتنے بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں، اتنی بڑی چھت، نیلی چھت آسمان کی، اور آپ دیکھیں کہیں کوئی پلر نظر نہیں آتا، اور اگر وہ پلروں پہ قائم بھی ہے تو ایسے جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو ایک طرف آپ آسمان کو دیکھیں، پھر دوسری طرف آپ زمین میں پہاڑوں کو دیکھیں. ضرور کسی دن نا اس آیت پر آپ غور کریں، کسی ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہوں جہاں پہ آپ کو نیلا آسمان نظر آتا ہے، دوسری طرف آپ کو پہاڑ زمین میں نظر آ رہے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے جانور ہیں کہ زمین میں طرح طرح کے پھیلے ہوئے ہیں، اور چوتھی طرف کیا ہے کہ طرح طرح کی نباتات ہے. آپ بے شک گاڑی میں جا رہی ہو نا، آپ ضرور اس آیت پر پریکٹیکل کریں، اس پر عملی مشاہدہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے دل پر اللہ کی ہیبت آ رہی ہوتی ہے، آپ پر اللہ کا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا آپ کا دل جو ہے وہ اعتراف کرے گا. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کا معترف ہوتا ہے تو اللہ کے آگے جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے. اور پھر طرح طرح کے پودے، طرح طرح کی نباتات، عجیب عجیب طرح طرح کے پہاڑ. ھذا خلق اللہ، یہ ہے میری تخلیق. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، یہ تو ہے اللہ نے بنایا. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اب ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، فارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلق، کیا پیدا کیا ہے، کیا پیدا کیا ہے. الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، من دونی ہی اس کے سوا ہیں، کہ اللہ کے سوا ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، جن ہستیوں کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، جنہیں تم اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھتے ہو، انہوں نے بھی کچھ کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ شریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، شریح گمراہی میں یہ ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، شرک کرنا، اور کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا ہے نا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تو یہ سبق جو ہے ये हमें क्या बता रहा है कि तौहीद इख्तियार की जाए और आखरत की तैयारी की जाए, मोहसिनीन में शामिल हुआ जाए, और जो मोहसिन होंगे वही मुफ्लिहून में शामिल होंगे, और मुफ्लिहून में शामिल होने के लिए जरूरी है कि अमली तौर पर तैयारी की जाए। लहवल हदीस को छोड़कर अहसनुल हदीस जो है उसको इख्तियार किया जाए और अकायद के साथ साथ इबादात की तरफ तवज्जो की जाए, वरना फिर क्या है कि इंसान जो है वो जुल्म करने वालों में शामिल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं बलिस ज़ालिमून फी दलालिम मुबीन, ये ऐसी गुमराही में है जालिम लोग जो सरी गुमराही है। तो जिसको अल्लाह गुमराही कह दे, जिसको अल्लाह गुमराह कह दे, फिर उसके गुमराह होने में कोई शक हो सकता है? उसके गुमराह होने में कोई शक नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला हम सबको हुस्ने अमल अता करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।